हमारे देश के विभिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाओं की विविधता देश की एकता में कहीं भी बाधक नहीं समझी जानी चाहिए। 10 बिगहा पर पानी बदले 10 कोसन पर बानी। इस कहावत के अनुसार पानी और बानी की अनेक रूपता तो स्वाभाविक ही है, और इस अनेक रूपता में एकता का भान कराने के लिए ही हमने अपने देश के दक्षिण के राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के ऊपर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की हुई है, जिसके कुछ कार्यक्रम आप सब सुन चुके हैं। इस कड़ी में कन्नड़ और तमिल भाषा एवं साहित्य के उद्गम और विकास के बारे में आप जान चुके हैं। दोस्तों, आज की कड़ी में हम मलयालम भाषा एवं साहित्य की विकास यात्रा के विषय में जानेंगे, और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए जिन्हें चुभन ने आमंत्रित किया है वे हैं चेन्नई से डॉक्टर के वत्सला जी। आप एतिराज कॉलेज फॉर विमेन में रीडर के पद पर रहीं। अवकाश प्राप्ति के बाद आपने 4 वर्ष तक MGR जानकी कॉलेज फॉर विमेन में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद अलंकृत किया। तो चलिए दोस्तों, चेन्नई से वत्सला जी को अपने पॉडकास्ट से जोड़ते हैं, और उनके साथ अजय यादव जी संवाद करेंगे जो बेंगलुरु से हमारे साथ होंगे।
वत्सला जी नमस्कार।
नमस्कार।
मैं अजय यादव चुभन पे आपका स्वागत करता हूँ
जी।
यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप चुभन पर आज हमारे साथ उपलब्ध हैं, और हमें आपसे मलयालम साहित्य के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। तो अगर आप आराम से हैं तो बात कर सकते हैं मलयालम साहित्य के बारे में।
जरूर जरूर।
अच्छा वत्सला जी, एक हर राज्य के साहित्य के बारे में विशेषता होती है, और राज्य का जो संस्कृति होती है उसके साहित्य से जुड़ी होती है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि केरल राज्य की उत्पत्ति के पीछे क्या प्रचलित कहानी है। ऐसे कहा जाता है कि केरल राज्य की उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई थी, उसके लिए एक कथा है कोई, इसके बारे में अगर बता सके तो आप।
हाँ हाँ, जरूर जरूर। वैसे तो परशुराम की कथा आप लोग सब जानते हैं ना, जमदग्नि महर्षि का बेटा जो है उनके पिता को एक राजा ने अपमानित किया, तो
अच्छा,
उसका बदला लेने के लिए उन्होंने क्षत्रिय कुल का 21 बार नाश किया।
अच्छा अच्छा।
संपूर्ण धरती को क्षत्रियों से बिल्कुल विमुक्त करने का उन्होंने प्रयास किया।
अच्छा।
तब हर वो तो ब्राह्मण कुल के हैं, इसलिए जब भी वो किसी राजा को मार करके वो राज्य अपने अधीन करते हैं तो वो द्रविड़ ब्राह्मणों को वो जगह दान में दे देते थे।
अच्छा, तो मूलतः परशुराम जी ने केरल राज्य की स्थापना की नींव रखी।
हाँ, वो पूरा सुनिए आप। तब क्या होता है, जब द्रविड़ ब्राह्मणों को उन्होंने सारा देश इस तरह दान में दे दिया, ब्राह्मण लोग इस कारण से नाराज थे कि एक ब्राह्मण होते हुए भी परशुराम ने क्षत्रियों का जैसा कार्य किया। इसलिए उन्होंने परशुराम से कहा कि जो धरती आपने हमें दान में दिया है उस धरती से आज शाम तक आपको चले जाना चाहिए।
अच्छा अच्छा।
तो पूरी धरती ब्राह्मणों के अधीन में है, तो उनके जाने के लिए कोई जगह नहीं था। तब परशुराम कन्याकुमारी पहुंच गए और वहां से परशु समुद्र में फेंका।
अच्छा।
तो वो परशु जहां जाके गिरा वहां से पानी हट गई, हट गया।
अच्छा,
और
अच्छा,
धरती निकल आई।
अच्छा,
तो वही केरल है, इसीलिए केरल को गॉड्स ओन कंट्री या भगवान की अपनी भूमि वगैरह के नामों से पुकारते हैं।
ये तो दिलचस्प बात है कि लोग कहते हैं कि गॉड्स ओन कंट्री, आज कैसे हुआ गॉड्स ओन कंट्री ये पता चला आपके माध्यम से।
अच्छा।
ये तो लोग कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री, लेकिन इसका कोई प्रचलित कथानक सामने नहीं था जो आपने बताया आज। तो परशुराम जी ने इसकी उत्पत्ति की इसने
जी।
अच्छा, तो केरल में, केरल की उत्पत्ति के बाद इसमें मलयालम भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि भाषा एक विशेष पहचान होती है किसी भी राज्य की, तो अगर मलयालम भाषा की उत्पत्ति केरल में कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में अगर कुछ प्रकाश डाल सके तो अच्छा होगा।
वास्तव में पहले वो दक्षिण भारत पूरा तमिल राज्य था, जैसे
जी जी जी
चेर चोल पांड्य, चार लोगों ने, चारों तमिल, दक्षिण में शासन उनका था, तो केरल में चेर राजाओं का राज्य था,
अच्छा।
तो वहां भी तमिल भाषा ही प्रचलित थी।
हाँ, ऐसा सुनने में आया है कि पहले दक्षिण में तमिल साहित्य पढ़ा जाता था पहले।
हाँ, तमिल पूरा चारों प्रांत, चारों प्रांत, वैसे तो चारों देश ही कहेंगे, तब राज्य कहते थे ना उन दिनों में, तो वो चारों जगहों में तमिल भाषा ही बोली जाती थी। तो
अच्छा अच्छा
परशुराम ने केरल को जब पानी से निकाल दिया, उस वक्त उस धरती को किसी को दान में देना था। तो अब तो ये द्रविड़ ब्राह्मण जो है वे सब तो उनके विरोध में हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उत्तर से आर्य ब्राह्मणों को वे बुला लाए और उनको
अच्छा
केरल केरल राज्य उन्होंने दे दिया।
अच्छा
तो
अच्छा
उनकी भाषा संस्कृत थी,
अच्छा
तो उनकी भाषा और तमिल, इन दोनों भाषाओं के मिलन से एक नई भाषा उत्पन्न हुई जिसे मलयालम
अच्छा
कहते हैं। तो उसमें
अच्छा
मलयालम में
तो
आप भी देख सकते हैं कि संस्कृत के कई तत्सम शब्द और तमिल के
अच्छा
पुराने जो चंदमिड़ जो है उनके
हेलो
कई शब्द आज भी जीवित है।
अच्छा, तो मलयालम मूलतः तमिल और संस्कृत का मिश्रण हुआ।
हाँ
अच्छा, ये बड़ी मतलब आश्चर्यचकित वाली बात है कि केरल का उद्गम कैसे हुआ और मलयालम भाषा का जो उत्पत्ति हुई, ये भी बड़ी दिलचस्प है कि संस्कृत और तमिल को मिलाकर मलयालम भाषा बनी।
जी,
शायद किसी ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया होगा।
उस वक्त क्या होता था, वो परशुराम ने जब उत्तर से आए हुए ब्राह्मणों को राज्य दे दिया तो उनकी भाषा संस्कृत है और पूरी धरती
अच्छा
पर उनका कंट्रोल है, तो फिर उन्हीं का ही ज्यादा हाथ रहता है, और साधारण जन जनता
अच्छा
से उनके मिलन के लिए तो कोई माध्यम चाहिए ही। इस
अच्छा
तरह जनता में जो प्रचलित भाषा है, जब हम कहीं नई जगह जाते हैं तो वहां की भाषा ऐसे ही तो सीखते हैं ना, अपनी भाषा और उनकी भाषा को मिला करके कुछ
अच्छा
इशारे से ऐसे ऐसे ही तो बातें होती है ना।
अच्छा 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 तो जो आर्य ब्राह्मण उत्तर से आए थे वो संस्कृत बोलते थे और वहां की
हाँ
आम जनता तमिल बोलती थी, तो तमिल और इस तरह तमिल और संस्कृत का मिश्रण हुआ और
हाँ
मलयालम का उत्पत्ति हुई। जी
जी और ये जो
जी जी
केरल में नंबूदरी लोग जो है ना,
जी जी
एक जाति है नंबूदरी कहते हैं, ब्राह्मण लोग है वे, मंदिर में पूजा वगैरह वे ही
जी
लोग करते हैं, वे ही वो उत्तर से आए हुए आर्य ब्राह्मण है।
अच्छा, नंबूद्री जो है उत्तर से आए वाले ब्राह्मण।
हाँ
अच्छा, तो भाषा की उत्पत्ति तो इस तरह से हुई। तो
जी
किसी भी भाषा की सार्थकता तब होती है जब उसमें साहित्य लिखा जाता है, तो मलयालम भाषा में साहित्य का आरंभ कब और किस रूप में हुआ, अगर इस बारे में अगर कुछ प्रकाश आप डाल सके तो बेहतर होगा।
मलयालम साहित्य के आदि चरित्र के बारे में कुछ खास पता नहीं चलता है, लेकिन मैंने पहले ही आपसे कहा तमिल ही प्रचलित थी, तो उस समय में जो राजा लोग थे वे बड़े संस्कृत और तमिल के बड़े पंडित थे, तो उन्होंने तमिल
जी जी
में कई रचनाएं की है। अब उदाहरण के लिए उस दिन ज्योति जी से आपके बात जब हुई तो उन्होंने तमिल साहित्य के बारे में बताया, तो उन्होंने
जी जी
ऐम्बेरम काव्यम यानी पांच महाकाव्य,
हाँ
जैसे क्या है, मणिमेघलय, कुंडलकेशी वगैरह के बारे में उन्होंने बताया था ना,
जी 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 जी
उसमें चिलप्पदिगारम उन पांच काव्यों में से एक है। तो
अच्छा
वो ये कन्नगी है ना, कन्नगी और कोवलन की कहानी आपको मालूम है ना? नहीं मालूम?
जी जी
वो
हमें
कन्नगी,
आप बता पता चल जाएगा।
वो पार्वती और शिव की कहानी है, अब उस पर मैं ज्यादा नहीं जा सकती क्योंकि उन बातों में जाने से तो पूरा समय उसी में चला जाएगा। तो वो चिलप्पदिगारम जो है वो चेरन चेंगुट्टवन नामक राजा ने लिखा था, जो चेर राजा थे, ये बताने के लिए मैंने ये बात आपसे कही थी। तो उस समय में तमिल साहित्य का ज्यादा प्रचार था। बाद में 10वीं सदी में कुछ ग्रामीण गीत तमिल मलयालम में प्राप्त हुए, जिसमें साहित्यिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और उनके काल निर्णय के बारे में भी ज्यादा सही सही बातें हमें प्राप्त नहीं होती।
अच्छा, तो मतलब मलयालम साहित्य के विकास के लिए कोई ठोस प्रामाणिक व्यवस्था ज्ञात में नहीं है, ज्ञान में नहीं है।
वो 10वीं सदी के बाद, पहले तो मैंने कहा तमिल साहित्य ही था ना, तमिल सारे प्रांत तमिल के अंदर ही था, इसीलिए तमिल साहित्य जो केरल के राजा लोग थे, केरल के कवि लोग थे, वे भी तमिल में ही लिखते थे। लेकिन बाद में जब मलयालम भाषा का विकास हुआ तो 10वीं सदी से लेकर के मलयालम में गीतों का प्रचार हुआ, उसे पाट कहते हैं। मलयालम का जो
अच्छा पाठ
आदि
कहते।
आदि
अच्छा
साहित्य जो है उसे हम पाट कहते हैं, पाट माने गीत है, इसी का उदय।
अच्छा अच्छा अच्छा
इन गीतों में श्रमिक लोगों के जीवन की गाथा वर्णित है, उनकी
अच्छा अच्छा
समस्याएं, उनकी
अच्छा
अभिलाषाएं, केरल का प्रकृति सौंदर्य, इन बातों का उसमें वर्णन मिलता है।
किया गया है।
आपसे
अच्छा,
अब
ये
तक
मलयालम साहित्य की जब बात कर। हाँ बोलिए।
नहीं, अब तक जो प्राप्त पाठ है यानी गीत है उनमें से रामचरितम सबसे प्राचीन माना जाता है।
अच्छा, रामचरितम सबसे प्राचीनतम जो साहित्य लिखा हुआ है।
पाठ पाठ गीत गीत है ना,
हाँ
गीत
हाँ
के रूप
हाँ
में मलयालम साहित्य का आरंभ हुआ था ना प्राप्त, तो
जी जी
उसमें से
जी
सबसे प्राचीनतम रामचरितम नामक पाठ है।
अच्छा, जब रामचरित्र पाठ की बात करते हैं तो एक और नाम सामने आता है साहित्य में, मापली पाट्ट। एक साहित्य है केरल में प्रचलित साहित्य है मापली पाट्टम।
हाँ।
तो मापली पाट्टम भी इसके कुछ गीत से साहित्य है या इसका क्या क्या अस्तित्व है, किस तरह से है, अगर बता सके तो आप मापली पाट्टम के बारे में।
वास्तव में ये मापले का मतलब है दामाद,
अच्छा अच्छा
और ये अरब से व्यापार के लिए मुसलमान लोग केरल आए थे आरंभ
अच्छा
में, तो उनके और केरल की स्त्रियों के साथ जो संबंध हुआ, उससे जो बच्चे पैदा हुए उनकी जाति, वो मुसलमान धर्म के अवलंबी थे, तो उनको
अच्छा
उनको मापले कहने लगे क्योंकि वे मुसलमान धर्म का
अच्छा
अनुयायी थे। तो करीब 14वीं सदी से इनका समय माना जाता है और ये लोग एक
अच्छा
धर्म मुसलमान धर्मावलंबी एक जाति है जिनको मापले कहते हैं। वास्तव में ये मापले
अच्छा
शब्द दामाद के लिए प्रयुक्त हुआ था, बाद में वह उस धर्म के लिए ही, उस धर्मावलंबियों के लिए ही उस शब्द का प्रयोग किया गया।
अच्छा तो जो से मैं समझ रहा हूँ, इस्लाम धर्म के जो अनुयायी अलग हुए, और जो अरब से लोग आए और जिनका हिंदू स्त्रियों से विवाह होने के बाद जो बच्चे पैदा हुए वो मापली का कहलाए गए,
हाँ,
तो मापली पाटम साहित्य पूर्णतः इस्लामिक नहीं है।
नहीं, उन्होंने केरलीय साहित्य के लिए बहुत कुछ देन दी है। उस समय में
अच्छा
आज के
अच्छा
जैसे धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं होता था, तो ये जो मापले लोग हैं उन्होंने भी केरलीय साहित्य में बहुत कुछ लिखा है। यहाँ तक कि हमारे पौराणिक हमारी कथाओं को लेकर के भी उन्होंने काव्य रचना की है, जैसे कि मापले रामायणम है। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, रामायण की कथा को लेकर के अपने जो उर्दू ढंग है उसी ढंग से उन्होंने काव्य रचना की। उदाहरण के लिए मैं एक सेंटेंस बता देती हूँ, उसमें उन्होंने यह बताया है, शूर्पणखा बीबी सुल्तान राम से निकाह करने की प्रार्थना की, उसके वर्णन करने का ढंग ऐसा था। अब शूर्पणखा को बीवी बनाया, राम को सुल्तान बनाया विवाह के लिए निकाह, इस तरह अपनी शैली में उन्होंने उसका वर्णन किया। और उनकी कई रचनाएं हैं जिनमें अपने यहाँ के संस्कृति और परंपरा आदि, कई उनके दर्शन आदि के बारे में कई रचनाएं उन्होंने की जो मलयालम साहित्य के लिए बहुत ही उपयोगी था।
तो जैसा मैं समझ रहा हूँ तो मापले लोगों ने, मापले जो जो वर्ग था उन्होंने हिंदू रीत और कतई इस्लामिक रीत को दोनों को काफी मिलाया आपस में।
हाँ, वैसे तो इस्लामी धर्म का अनुकरण करने पर भी हिंदू धर्म के प्रति उनका विरोध नहीं था, और यहाँ तक कि हिंदू पौराणिक पात्रों को लेकर के उन्होंने रचनाएं भी की है।
अच्छा। इसके अलावा मलयालम में एक बात और देखने को मिलती है कि ऐसा कहा जाता है कि ईसाई धर्म भी सबसे पहले केरल में ही आया था।
सही बात है।
तो हाँ, तो वहाँ इस्लाम भी पहले आया और ईसाई भी पहले आया, तो इस्लाम का तो फर्क जो जो प्रभाव मलयालम साहित्य में पड़ा बताया आपने, तो ईसाइयों का भी योगदान रहा होगा मलयालम साहित्य के विकास में, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सके तो बेहतर होगा।
वास्तव में मुसलमान लोग व्यापार के लिए केरल आए, ईसाई लोग वैसे व्यापार के नाम से आने पर भी उनका मुख्य उद्देश्य धर्म प्रचार था।
अच्छा। हाँ,
तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ जहाँ कहीं भी वे जाते हैं वे क्या करते हैं, वहाँ स्कूल वगैरह बनाते हैं और वो सब उनके धर्म प्रचार का केंद्र बन जाता है।
अच्छा।
ये मलयालम भाषा के विकास में उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है। तो ये कहते हैं कि जर्मनी के पादरी अर्नोस नामक एक पादरी थे, उन्होंने 1699 में वे केरल आए। उन्होंने संस्कृत और मलयालम भाषा में पांडित्य हासिल कर एक कोश, मलयालम पोर्चुगल भाषा का एक कोश और एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। संस्कृत में पांडित्य प्राप्त कर ऑस्ट्रिया वाले पौलिनियोस नामक व्यक्ति ने मलयालम में गद्य और पद्य में रचनाएं की।
अच्छा।
इस तरह
तो जो
हाँ बताइए आप बताइए।
नहीं आप बताइए फिर पूछूंगा मैं आपसे, आप बताइए पूरा कर लीजिए।
इस तरह जो अंग्रेज लोग, जो ईसाई लोग जो है उन्होंने वैसे हमारे साहित्य के लिए बहुत कुछ साहित्य के विकास में काम किया, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार था, इसलिए वे ईसाई धर्म के बारे में और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ही ज्यादा समय उन्होंने किया। ये कहते हैं कि इटली के एक मैथ्यूस नाम का पादरी जो है उन्होंने हॉर्टस मलबारिकास यानी केरला रामम नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें केरल की वनस्पतियों का विशद वर्णन किया है।
अच्छा।
लेकिन यह किताब हॉलैंड में प्रकाशित की गई और अब उसकी प्रतियां प्राप्त नहीं होती है।
अच्छा। तो मैं जो समझ रहा हूँ जो मापले लोग थे उन्होंने काव्य में ज्यादा लिखा और जो ईसाई लोग आए उन्होंने गद्य का विकास किया मलयालम भाषा में।
दोनों का किया है लेकिन उनका ज्यादा केंद्रीकरण उनका गद्य पर रहा।
अच्छा। वसला जी मलयालम साहित्य में कुत और कुटियाट्टम आदि दृश्य के बारे में बहुत प्रचलित बात आती है कि कुत और कुटियाट्टम दृश्य क्या होते हैं, तो ये क्या कलाएं हैं, क्या दृश्य कलाएं हैं, इसके बारे में अगर आप प्रकाश डाल सके तो श्रोता अच्छी तरह समझ पाएंगे।
जरूर। ये प्राचीन भारतीय कला रूपों में ये कुटियाट्टम कुत आदि दृश्य कलाएं हैं। तो ये क्या होता है, ये कूत जो है कूत पाठकम कूडियाट्टम ये सब 13वीं सदी से पूर्ण रूप से विकसित हुआ था और ये मंदिरों में दिखाने वाले दृश्य कलाओं में है। ये चाक्यार नामक एक जाति के लोग हैं, ये लोग इन कलारूपों को मंदिरों में प्रस्तुत करते थे। संस्कृत
अच्छा,
में
अच्छा।
संस्कृत में श्लोक कहकर मलयालम में उसका अर्थ बताते और संदर्भ के अनुसार अच्छा, अभिनय अच्छा। भी करते थे।
अच्छा,
लोगों
अच्छा।
को पौराणिक कथाएं सुनाने के साथ साथ आलोचना द्वारा सामाजिक अनाचारों को दूर करना इनका लक्ष्य था। कूत
अच्छा,
में
तो कूत और कुटेटम का जो कला जो है इन्होंने इस कला के माध्यम से साहित्य को आम लोगों से जोड़ा है।
जी, कूत में एक व्यक्ति अभिनय करता है, कई लोग जब मिलकर के करते हैं तो उसे कूड़ी आटम कहते हैं।
अच्छा अच्छा।
और
अच्छा।
जब पौराणिक कथा सुनाते हैं तो उसको पाठगम कहते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरह से इस कूत और कुटेटम कलाओं का साहित्य से इस तरह से मेल है कि इन्होंने साहित्य को आम जन से जोड़ा है। अच्छा वसला जी, केरल में के साहित्य में और इवन कन्नड़ के साहित्य में भी एक शब्द आता है चंपू काव्य, जो कन्नड़ साहित्य में भी काफी पॉपुलर है और केरल मलयालम साहित्य में भी फर्क है। तो मलयालम साहित्य में चंपू काव्य किस तरह से विकसित हुआ और कन्नड़ में जो चंपू काव्य लिखा गया उसके बारे में अगर कुछ तालमेल है तो बता सके तो बेहतर होगा।
मैं कन्नड़ के बारे में तो ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मलयालम चंपू काव्य के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ।
जी जी जी।
एक एक
अभी जी जी।
11वीं सदी से पूर्व हमारे यहाँ ये जो गीत वगैरह होता था उसमें ज्यादातर गणिकाओं के बारे में साहित्य होता था। ये देवदासी प्रथा अच्छा। जो है उसके परिणाम स्वरूप उनके बारे में ज्यादा प्रचार होता था। उस वक्त ये चंपू काव्य का आरंभ हुआ जिसमें उन्होंने अच्छा। इन बातों का बातों से भिन्न उस समय में ये जो गीतों में जो समाज की जो क्या कहना है रूढ़िवादी समाज की जो प्रवृत्तियां है ना
अच्छा उसका वर्णन
नहीं क्या? उसके विरोध में इन चंपू काव्यकारों ने कुछ अलग अच्छा, उन्होंने अच्छा, भाषा में भी वास्तव में क्या होता था, पहले साहित्य उच्च वर्ग के लोगों के मनोरंजन का साधन ही रहा।
अच्छा।
लेकिन इन लोगों ने उसमें भाषा आम जनता के समीप लाने की कोशिश की और 14वीं सदी के अंत तक देश में जो चारित्रिक पतन की सीमा रही, सीमा उल्लंघन हो रहा था, उसके उच्च उसके विरोध में इन लोगों का जो भाव है मन में, जो आम जनता में जो विरोध की भावना है उसको इन चंपू रचनाकारों ने अपना वर्ण विषय बनाया। उन्होंने
तो मूलतः चंपू काव्य जो है सामाजिक चेतना के लिए काम में आया था।
उन्होंने ये गणिकाओं के बारे में जो साहित्य था उससे साहित्य को मुक्त करके पौराणिक कथाएं जैसे रामायण चंपू, भारतम चंपू, नैषधम चंपू आदि इस काल में इन्होंने जनता का ध्यान इन पौराणिक कथाओं की ओर मोड़ करके उनमें जागरण लाने की कोशिश उन्होंने की।
अच्छा अच्छा। तो सामाजिक चेतना मूलतः इसके द्वारा की गई थी। अच्छा वसला जी, एक और शैली मलयालम साहित्य में बहुत ही प्रचलित रही है किलिपट शैली और तुंजु तेशुशन का परिचय, एक ये बहुत ही प्रचलित शब्द है जो मलयालम साहित्य में कहे जाते हैं, इसके बारे में अगर बता सके कि वास्तव में किलिपट शैली और तुंजु तेशुशन क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, इसका आधार क्या है, तो श्रोता समझ पाएंगे बेहतर से।
तुंजु तेशुशन मलयालम साहित्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो तुंजतेरे तीर्थन के बारे में बोलना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि
अच्छा,
उस
अच्छा,
समय में समाज में जाति पांति उच्च नीच का भेदभाव बहुत था। तो ये येलुतचन जो है निम्न वर्ग के थे,
अच्छा,
लेकिन बड़े पंडित थे। तो ये जो उच्च वर्ग के जो नंबुदरी लोग जो है उन्होंने येलुतचन को बहुत तंग किया।
अच्छा,
उन्होंने रामायणम लिखा, तो उनके ये कहते हैं कि उनके पूरे ग्रंथ को उन्होंने जला दिया।
अच्छा,
इस तरह की कहानियां है। तो ये येलुतचन वास्तव में वो संस्कृत में जो आध्यात्म रामायणम है उसमें से कहानी लेकर के कथा सार को लेकर के अपने ढंग से आम जनता की समझ में आने लायक मलयालम भाषा में उन्होंने रामायण की रचना की। तो उन्होंने इसमें
अच्छा,
किलिपाटे नामक एक नई शैली का भी उन्होंने उसमें प्रयोग किया।
अच्छा,
उसमें क्या होता है,
अच्छा,
एक तोता कहानी सुनाता है। इस तरह वो पाठक जो है तोते से कहते हैं, अरे तोते जरा हमें श्री रामचरितम सुनाओ ना, तब तो वो गाने लगती है। इस
अच्छा,
तरह
अच्छा।
तोते के मुंह से कहानी कहलवाने के ढंग से जो काव्य रचना हुई उसे हम किलिपाट कहते हैं। तो पूरा रामायण
तो ये वार्तालाप की तरह होती है, ये वार्तालाप की तरह से होता है।
वार्तालाप की तरह अच्छा, माने अच्छा। सवाल तो एक एक अध्याय में एक एक बार पूछते हैं और फिर पूरी कहानी एक अध्याय में वो अयोध्या कांड पूरा कह के खत्म करके और अंत में ये कहते हैं इस तरह अयोध्या
अच्छा।
कांड समाप्त हुआ, तो अगले चैप्टर में वो पूछते हैं आगे का ये बताओ, तो फिर वो ऐसे इस तरह होता है।
अच्छा, तो तुंज त्रिशूल ने जो कथा जो ग्रंथ खत्म कर दिए गए थे, इस वर्ग ने वो ग्रंथ दोबारा किलिपट शाली में लिखे दोबारा
ने दोबारा लिखा।
हाँ, वो दोबारा लिखा
त्रिशूल। और यहाँ तक कि कहानी है कि ये नारायण भट्ट त्रिपाठ जिन्होंने वो नारायणियम लिखा था उन्होंने येलुतचन से सलाह मांगी थी।
अच्छा,
इतना बड़ा विद्वान येलुतचन, इतने बड़े
अच्छा।
विद्वान रहे और उनका रामायण जो है आज केरल में घर घर में पढ़ा जाता है, गरीब से
अच्छा,
लेकर
अच्छा,
के अमीर तक
मुर्ता...
सभी घरों में रामायण का, खास करके हमारे यहाँ एक महीना है उसे हम रामायण मासम ही कहते हैं।
तो अच्छा, रामायण मास
उस
होता है।
महीने में पूरा
अच्छा।
महीना हर घर में रामायण का पाठ होता है, तो यही येलुतचन का जो रामायण है
अच्छा।
उसी का पाठ होता है।
अच्छा अच्छा, और मलयालम साहित्य में एक और चीज सामने आती है, कविताएं। तो कविताय, हाँ कविताय मूर्ता क्या है और इसके बारे में अगर बता पाएंगे तो अच्छा होगा।
त्रय माने आप जानते हैं संस्कृत है ना, तीन।
अच्छा अच्छा अच्छा, कविता तीन।
तो मलयालम में तीन कवि बहुत प्रसिद्ध रहे, तो आदि काल में तीन कवि प्रसिद्ध रहे, वे हैं चरुशेरी, कुंजन नंबियार और येलुतचन।
अच्छा,
और
अच्छा।
आधुनिक काल में कवित्रय से ना जाने जाने वाले तीन लोग हैं, कुमार नाशान, उल्लूर परमेश्वरय्य और वल्लतोल नारायण मेनन।
हाँ, उल्लूर साहित्य काफी प्रचलित साहित्य माना गया मलयालम।
तो ये कुमार नाशान जो है, जैसे मैंने येलुतचन के बारे में कहा ना, उसी तरह ये भी जरा निम्न जाति के थे, इसीलिए ये जाति पांडु का जो
अच्छा।
लोगों का उस तरह का व्यवहार है उनका, उनको भी शिकार होना पड़ा था। तो उनकी
अच्छा,
उनकी
अच्छा,
रचनाओं
अच्छा।
में उन बातों के बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। जैसे चंडाल भिक्षु की आपने सुना होगा, चंडाल भिक्षु की के बारे में, कहानी के बारे में, तो वो ये चांडाल
जी,
से वो बुद्ध भिक्षु आनंद पानी लेके पीते हैं, ऐसे ऐसी कहानियां
है।
ये करुणा है, करुणा जो है एक वेश्या है, वो एक बुद्ध भिक्षु से वो प्यार करती है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी तक समय नहीं हुआ जी, आया जी. है समय नहीं आया है. और जब उसके व्यवहार से वो उसे मार करके हाथ पांव सब तोड़ कर काट करके उसे स्मशान में डालते हैं, उस वक्त वह आकर के उसे ज्ञानोपदेश देते हैं. इस तरह की कहानियां जो नीच जाति के जो लोग हैं उनके साथ उच्च जाति के लोगों के बीच का जो संबंध है और ज्ञान दान वगैरह के बारे में उनके काव्य में ज्यादा मिलता है.
ये जो कहानियों वर्णन किया आपने चांडाल को और कहते हैं दूसरा बताया आपने, इसका संबंध शायद उत्तर भारत के साहित्य से भी काफी मेल खाता है.
इसीलिए मैंने कहा आपने सुना होगा क्योंकि ये सब बुद्ध कहानियों में आता है ना.
जी जी जी, इसलिए मैं पूछा था आपको, आपको सुन रहा था तो मैंने कहा कि ये उत्तर भारतीय कहानियों में भी इसका विश्लेषण मिलता है, उल्लेख मिलता है.
ऐसे ही किसी कहानी से प्रेरणा लेकर के ही तो ये लिखते हैं ना.
जी जी जी, तो मतलब उत्तर भारत का साहित्य और मलयालम साहित्य काफी समानांतर है.
पूरे भारत के साहित्य में आप देखेंगे कि समानता मिलेगी, खास करके जहाँ पौराणिक कथाओं की चर्चा होती है वहाँ बिल्कुल समानता मिलेगी.
अच्छा अच्छा.
और फिर उल्लूर परमेश्वर अय्यर,
जी जी,
वे वैसे तो वे ब्राह्मण कुल के हैं, फिर भी वे जाति पांडी के कट्टर विरोधी थे और उन्होंने भी बहुत सुंदर रचनाएं की है, जैसे कर्णभूषणम, पिंगला, भक्ति दीपिका आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं. उनकी भाषा ज्यादा संस्कृत दृष्ट है और उनकी पिंगला का मैंने अनुवाद भी किया है.
अच्छा, पिंगला का अनुवाद आपने किया है, बहुत अच्छी बात है. अच्छा,
वो किताब प्रकाशित भी है और उस पर मुझे पुरस्कार भी मिला है.
बहुत बढ़िया, कहते हैं ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है कि इतने बड़े साहित्यकार हमसे अपना ज्ञान साझा कर रहे हैं.
और तीसरा है वल्लतोल नारायण मेनन.
जी जी,
ये तो बड़े स्वतंत्रता सेनानी और उस समय अंग्रेजों के शासन काल में अपनी रचनाओं के द्वारा भारतीयों के मन में, खास करके केरल के लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने वाले. यहाँ तक कि प्रिंस ऑफ वेल्स ने उनको जब सम्मान दिया तो वो लेना उन्होंने अस्वीकार किया.
अच्छा,
इतने महान व्यक्ति हैं. और सबसे बढ़कर के, उससे भी बढ़कर के बड़ी बात है, आपने सुना होगा कलामंडलम. कलामंडलम नामक एक संस्था की उन्होंने स्थापना की जिसमें कथकली को लोक प्रशस्ति दिलाने का काम उन्होंने किया. ये कथकली की एक दृश्य कला है, बहुत ही पुरानी कला है. केवल कथकली ही नहीं, केरल की सभी प्राचीन कलाओं को पुनर्जीवित करने का काम उन्होंने किया और उसके लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया.
तो मलयालम साहित्य में साहित्य को जो है आम जन से जोड़ने के लिए दृश्य का माध्यम चुना गया. अच्छा अच्छा अच्छा. वत्सला जी, एक हर साहित्य में एक उपन्यास का बड़ा महत्व होता है, तो उपन्यास साहित्य का आरंभ मलयालम भाषा में किस तरह से हुआ, अगर आप बता सके तो बेहतर होगा.
उपन्यास के वैसे तो आरंभ में छोटा मोटा कुछ लिखते थे, लेकिन उपन्यास के लक्षणों से युक्त पहला मलयालम उपन्यास 1889 में चंदुमेनोन नामक एक व्यक्ति ने इंदुलेखा नामक एक उपन्यास लिखा. इसी को प्राप्त पहला उपन्यास मानते हैं. उसके पहले चरुवलत चातुनायर नामक एक व्यक्ति ने मीनाक्षी नामक एक उपन्यास लिखा था. वो एक सामाजिक उपन्यास. वो ये दो उपन्यास ही ज्यादातर प्रारंभिक उपन्यास, प्राप्त जो उपन्यास है उनमें से हम इन दोनों को ही ज्यादातर प्राप्त उपन्यास में से ज्यादातर पुराना मानते हैं. तो
ये कब लिखा गया था
जी?
कब लिखा गया था ये उपन्यास?
पहला वाला 1889 में और दूसरा अच्छा. वाला जो मीनाक्षी है वो 1890 में.
अच्छा अच्छा, तो लगभग 2000 साल पहले का, ये 200 साल पहले का उपन्यास साहित्य का जो है प्रचलन शुरू हुआ था.
जी,
अच्छा अच्छा
और अब तो उपन्यास का काफी विकास हुआ है मलयालम साहित्य में। अब उपन्यास कहानी सभी विधाओं का बहुत विकास हुआ है। इनमें से एक एक के बारे में
अच्छा
जब हम चर्चा करेंगे तो एक सेक्शन हो जाएगा, उतना विकास हुआ।
अच्छा 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 तो आधुनिक मलयालम साहित्य में किस तरह से विकास हुआ, अगर इस पर प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आधुनिक मलयालम साहित्य की स्थिति क्या है, जन से जुड़ाव कैसा है, और किसकी किन किन विधाओं में यह आगे बढ़ा है, तो इस बारे में बता पाएंगे तो वो एक अच्छा रहेगा। माना कि सूची में नहीं है, लेकिन एक जिज्ञासा का विषय है कि आधुनिक रूप में मलयालम साहित्य किस तरह से है।
वास्तव में क्या हुआ, जैसे वल्लत्तोल नारायण मेनन, ये कुमार नासन जैसे महान लेखकों से प्रेरणा पा करके कई
जी
नवयुवक साहित्य क्षेत्र में उतरे। फलस्वरूप
अच्छा अच्छा
मलयालम में निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र, समीक्षा, हास्य, बाल साहित्य, विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, शिक्षा आदि सभी विधाओं में बहुत सारी रचनाएं निकली हैं। आज भी नई नई विधाएं निकल रही हैं और आप देखते हैं कि इसमें गूगल में ही साहित्य के लिए उन्होंने एक अलग ऐप बनाया है जिसमें कहानियां
अच्छा
कहानियां उपन्यास पूरा नई नए नए लेखकों का वो पूरी कहानी उसमें प्रकाशित करते हैं।
अच्छा
वो
अच्छा
काफी विकसित है।
तो अभी अब इसमें मलयालम साहित्य में अन्य विधाओं की स्थिति कैसी है अभी, इसे और प्रकट होना है, या कहते पूरी तरह से विकसित हो गया है, या विकसित होना है
काफी
अभी।
विकसित है और काफी आगे बढ़ रहा है।
अच्छा, तो अभी का मलयालम साहित्य आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है,
हाँ मलयालम साहित्य का
तो
काफी
मलयालम में।
विकास हुआ है।
हाँ, तो मैं जो समझाऊं, मलयालम साहित्य में मूलतः खाली भारतीयों तो का ही हाथ रहा हो ऐसा नहीं है,
नहीं
जो विदेश से लोग आए हैं, जो ईसाई लोग आए हैं, जो मुस्लिम लोग आए हैं, अरबी लोग आए हैं, उन्होंने भी मलयालम साहित्य के विकास में काफी योगदान दिया है।
वैसे तमिल साहित्य के विकास में भी कई ईसाइयों ने योगदान दिया है। हाँ
जी जी
वो
जी
तमिल तंदे कहते हैं, एक वो ईसाई है, उन्होंने तमिल सीख करके उसमें बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की है। उनका नाम अब मुझे याद नहीं आ
अच्छा
रहा है लेकिन उनका,
हाँ, सोन ज्योति जी ने बताया था
हाँ,
मुझे।
तो ऐसा है कि जब कोई विदेशी यहाँ आकर के शासन करने लगते हैं तो उनके साहित्य का, उनके संस्कृति का, सबका ये जब आपसी संबंध होता है तो संस्कार का, भाषा का, साहित्य का आदान प्रदान होता ही रहता है ना। बेबी आरणों को आदान प्रदान होता ही रहता है ना।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वत्सला जी, आपने मलयालम साहित्य के बारे में इतनी रोचक जानकारी हमें दी, और सबसे बड़ी बात कि केरल राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, गॉड्स ओन कंट्री क्यों कहा जाता है, मलयालम भाषा के उत्पत्ति के बारे में जो आपने रोचक तथ्य बताए, ये बहुत ही अच्छी ज्ञान वाली बातें थी, और आपके माध्यम से हमें मलयालम साहित्य को जानने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि चुभन के श्रोता आपके माध्यम से मलयालम साहित्य को और अच्छी तरह जान पाएंगे और अपनी संस्कृति से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार वत्सला जी, चुभन से जुड़ने के लिए और मलयालम साहित्य के बारे में हमारा ज्ञान अर्जन करने के लिए।
मैं अपना विचार आप लोगों से बांटने का जो मौका आप लोगों ने मुझे दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। इतने सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, इतने तबीयत के, इतने सारे प्रॉब्लम के होने के बावजूद आप लोगों ने पीछे हटे बिना इस कार्य को जो आगे बढ़ाया उसके लिए मैं आप लोगों को साधुवाद देती हूँ।
नहीं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद अजय जी।